स्वामी अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें।
करण वीतराग विख्या नमोताहि जाते भये अर्हन्ता निरत
बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की जय। जय का परम पूज्य मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम सभी लोग पिछले दिनों से एक ही बात पे विचार कर रहे हैं और रोज विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो प्रक्रिया हमें दी है उस पर ही हमने विचार किया है। हमने अपने जीवन के अनुभव से भी ये जाना है कि जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं वो हमें उतना लाभ नहीं दे पाता। खोटी दृष्टि से किया गया भला कार्य भी बुरा ही फल देता है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है और हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य भी हो जाता है तब भी वो माफ करने योग होता है। जैसे अपन ने समझा था कि मां बेटे को डांट बताती है, मैं पीटूंगी, लेकिन भाव उसका पीटने का नहीं है, खोटा भाव नहीं है। उसका भाव है कि तू सुधरता क्यों नहीं, तू भला आदमी क्यों नहीं बनता है। और अगर दूसरा कोई कह रहा हो, बहुत प्रेम से भी कह रहा हो, नहीं मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, आप आइए तो मेरे साथ, बस जरा सा इस भीड़ से थोड़ा मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, अभी मैं आपसे कुछ भी कितने बढ़िया से बात कर रहा हूं, लेकिन उसके भीतर कौन सा खोटा विचार है कि जैसे ही मैं इसको कहीं ले जाऊंगा और फिर मारपीट करूंगा। हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें लाभ देगा या कि हमारी क्षति करेगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि इस संसार के बारे में, जो भोग विलास की सामग्री मिली है उसके बारे में, और जिस शरीर में हम रह रहे हैं उसके बारे में हमारी दृष्टि निर्मल हो, हम वास्तविकता को जाने। दृष्टि की निर्मलता के मायने ये भी है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है चीजों के बारे में, हम जो वे जैसी हैं वैसा ही जानते हैं। तो ऐसी जब हमें वास्तविकता का बोध होने वाली दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है, तब फिर जो ज्ञान हमें उत्पन्न होता है अनायास ही होता है। दृष्टि निर्मल होने पर ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। ज्ञान पहले से ही रहता है, पर वो निर्मल कब होता है? जब दृष्टि निर्मल होती है, तो हमारा ज्ञान भी निर्मल होता है दृष्टि के निर्मल होते ही। और फिर हम अपना विचार करने लगते हैं कि अरे, जीवन को तो इस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, वरना यदि दृष्टि निर्मल ना हो और आत्मज्ञान ना हो, तब भी हम कितना ही जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करें, पर वो पुरुषार्थ समीचीन नहीं कहलाए। ये हमने पिछले दिनों समझा है, सीखा है, और फिर हमारे समझ में अपने आप आने लगता है कि अरे, और कोई इस संसार में हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है। पाप मरा तिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन बन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। अपने कल्याण को जानने वाला इस बात को पहचान लेता है कि मेरे अपने द्वारा किए गए पापकारी ही मेरे शत्रु हैं, और पाप से बच करके जो मैं धर्म की तरफ जाता हूँ वही मेरा बंधु है। इस संसार में शत्रु और बंधु यही मेरे अपने परिणाम हैं, और उन पाप कार्यों के लिए मेरे अपने जो काषायिक भाव हैं, जो मेरे अपने विकारी परिणाम हैं, वे ही कारण बन जाते हैं। तो फिर मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने उन परिणामों को संभालना चाहिए। फिर परिणाम कैसे संभलें? तो बाहर के वातावरण से मेरे परिणाम प्रभावित होते हैं, इसलिए मुझे अपने बाहर के वातावरण को भी लिमिटेड करना पड़ेगा, मर्यादित करना पड़ेगा। मुझे उसकी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी, खुद पर अंकुश रखना पड़ेगा। क्या होता है, जब तक हम अपने आप में परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें बाहर की जो चीजें प्रभावित करती हैं उनसे भी बचने की सलाह दी जाती है। हाँ, फिर जो परफेक्ट हो जाता है उसको फिर वो कहीं भी रहे, जैसे अपन से ध्यान करते नहीं बनता हो तो अपन सबसे पहले क्या कहेंगे कि भैया जरा शोरगुल जहाँ ना हो, जरा भली जगह हो, मच्छर वच्छर नहीं काटे, प्रशस्त हो, ऐसी जगह में बैठ करके फिर ध्यान करो। और अगर ध्यान सद गया है तो चौपाट पे बैठ जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने आत्मा में लीन हो। तो जब तक हम अपने आप में परिपक्व नहीं होते हैं, तब तक हमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि संभल संभल करके, जो बाहर की चीजें हमें प्रभावित करती हैं और जो हमारे मन को विकृत करती हैं। प्रभावित करने से मेरा मायना यह है कि जो विकृत करती हैं। भली चीजें भी हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन उनको हम सहसा तो अभी छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम जो चीजें हमारे मन को विकारी बना देती हैं, जिनका संपर्क हमारे मन को गंदा बना देता है, उस संपर्क से बचें। जिनसे मेरे कषायों में तीव्रता आती है, जिनसे मेरे अहंकार जागता है, जिनसे मेरे क्रोध जागता है, जिससे मुझे मायाचारी और लोभ करने का मन होता है, उन चीजों से मैं बचूं। ऐसा मुझे पहले धीरे धीरे बाहर से अभ्यास करना पड़ता है, और फिर ये जो बाहर का अभ्यास से जितना भीतर सद जाता है, तब फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। बाहर से पाप छोड़ना अंतरंग के राग द्वेष परिणामों को कम करने के उद्देश्य को लेकर के ही छोड़ा जाता है। तो पहले हिंसा नहीं करना, भैया झूठ नहीं बोलना, काहे के लिए? क्यों हम ऐसा करें? कहते अपने परिणाम अच्छे बनाने के लिए करें, और जब परिणाम अच्छे हो गए तो ना मेरे से झूठ बोला जाएगा, ना मेरे से हिंसा हो सकती, ना मैं चोरी करूंगा, काहे को करूंगा। मेरे अपने भीतर जो गड़बड़ियां होती उनकी वजह से मैं उन सबको मैनिफेस्ट करता हूं, बाहर उन सब की अभिव्यक्ति पसंद करता हूं। अब जब मैंने अपने अंदर को ही अच्छा बना लिया, तो फिर बाहर मेरे जीवन में तो सारी चीजें व्यवस्थित हो ही जाएंगी। जैसे कि अगर किसी कक्षा में और स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बच्चे बड़ा ऊधम कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, जैसे गुरु जी और गेट पे पहुंचते हैं क्लासरूम के, सब व्यवस्थित एकदम, अभी उनने कहा नहीं कुछ भी, लेकिन उपस्थिति मात्र से व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर गुरुजी माना है तो, और नहीं माना तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वो अल्लाह चलता रहेगा। और अगर जैसे ही हमको ऐसा लगता है कि ये गुरुजी हैं और आ गए हैं और हमें उनकी उपस्थिति से हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में अगर ये विचार आ जाता है कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो हमारे जीवन में अपने आप व्यवस्था आना शुरू हो जाता है। हम अपने आप रेगुलेट होने लगते हैं, हम अपनी अपने ऊपर अंकुश अपने हाथ से रख लें। और वास्तव में अपने जीवन में अपने हाथ से रखा हुआ अंकुश ही हमें ऊंचे उठाता है, बाह्य अनुशासन हमें ज्यादा ऊंचाई नहीं दे सकता। बाह्य अनुशासन का निर्धारण भी हमारी अंतरंग चेतना ही करे तो वो बाह्य अनुशासन ठीक है, नहीं तो बंदूक की नोक पर होने वाला अनुशासन वो नहीं। इसलिए आत्मानुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपने हाथ से लगाएगा अंकुश ऊपर उठा सकता, दूसरे के हाथ से लगाया अंकुश ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकता, कसमटसाहट होती रहेगी उससे मुक्त होने की। तो इस तरह हमने इतनी बातें पिछले दिनों समझ ली हैं और यहां तक हम पहुंच गए थे कि अपने ऊपर अंकुश लगाने का तरीका तो यही है कि अब मैं क्रम क्रम से पांचों पापों का आंशिक रूप से ही सही त्याग करता हूं। एक सदगृहस्थ को क्या करना चाहिए अपने ऊपर अंकुश रखने के लिए, अपने परिणामों को सुधारने के लिए? तो मेरे परिणाम पाप में चले जाते हैं, झूठ में, चोरी में चले जाते हैं, क्या करूं? उससे बचने के लिए मैं संकल्पित हो जाऊं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक उपाय तो ये है। तो हमने पिछले दिनों, मैं आंशिक रूप से पांच पापों को छोड़ता हूं, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे के प्राण चले जाएं, मैं संकल्प पूर्वक इरादा करके और दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी का सामान चुराऊंगा नहीं, उसके बिना दिए नहीं ग्रहण करूंगा, मैं अनचेस्टिटी नहीं करूंगा, मैंने जिससे विवाह किया उसके अलावा बाकी सबके प्रति मेरे मन में अच्छे भाव रखूंगा, और परिग्रह को सीमित कर लूं। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोर और आगे। अपनी शक्ति विचार का मतलब क्या है? हमारी शक्ति तो बहुत रख भी की है, मनो झील पे हो के नहीं, संक्लेश करोगे ज्यादा रखोगे तो। इसलिए कह रहे कि अपनी शक्ति विचार मतलब अपनी आवश्यकता तो देख लो कि कितना आवश्यक है उतना रख लो, नहीं तो उससे भी अननेसेसरी बेवजह हमारे परिणाम खराब होने वाले हैं, उसी की चिंता लगी रहेगी, संरक्षण करना पड़ेगा। इस तरह से कितनी आसानी से हमें और उन आंशिक रूप से पापों से बचाने की प्रक्रिया दी, फिर हम और अधिक इस प्रक्रिया को दृढ़ कर सकें। तो जैसे खेत में कोई बढ़िया सी चीज उगाते हैं तो उसकी रक्षा के लिए एक बारका लगा देते हैं, बाड़ी बना देते हैं, ऐसे ही कुछ और एडिशनल व्रत भी हैं कि भाई उनको भी अंगीकार करो जिससे कि आपके इन पांच व्रतों का पालन अच्छे से हो सके। और फिर इतना ही नहीं, अकेले गृहस्थ ही बने रहोगे जीवन भर? नहीं, मुझे संन्यास भी लेना है, मुझे इस गृहस्थी की सफलता मेरी इसमें है कि अंत समय में मैं सबसे अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर के अब आखिरी कर्तव्य है अपने आत्म कल्याण का। जिसने गृहस्थी करी है उसका पहला दायित्व तो है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे ठीक ठीक ढंग से, अपने जिस समाज को बिलोंग करता है उस समाज के बारे में चिंता रखे, जिस राष्ट्र में रहता है उसकी भी चिंता करे, और इन सब अपने परिवार से जैसे ही और उसके दायित्व से मुक्त हो गए तो अपने आत्म कल्याण का और प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय भी करे। तो उसकी शिक्षा कैसे मिलेगी? जो साधु जन हैं, जो मुनि जन हैं, वे आत्म कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण करने की चिंता रखते हैं, वैसी ही शिक्षा मुझे भी मिले। तो चार शिक्षा व्रत रख दिए कि जिससे मुनियों के जैसे आचरण की शिक्षा मिले, थोड़ी देर शांत बैठ करके तमाम विषमताओं के बीच में भी कैसे समता रखी जाती इसका अभ्यास कर लेना, इसी का नाम तो सामायिक। और ये तो घंटे दो घंटे होगा, अष्टमी चौदस अगर आ जावे तो पूरे दिन दिन भर ऐसा करने के लिए फिर भोजन ही नहीं करना, शांति से अपने
चारों प्रकार के भोजन का त्याग करके बैठ करके धर्मामृत का स्वयं पान करना, दूसरे को कराना, सत्संगति करना। और एक बार सत्संगति में बैठ जाता है व्यक्ति, अच्छा मन लग जाता तो भूख प्यास अपने आप भूल जाती। तो कहते आज भूख, आज रोटी की तरफ नहीं जाना, आज अपने आत्मा की तरफ, समीपे वसति उपवास, अपने निकट बैठो, आज बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा इस तरह प्रोषद उपवास, भोगोपभोग की सामग्री अपार पड़ी हुई है, जितनी चाहो उतनी, लेकिन मैंने तो आज लिमिट बना ली कि इतनी इतनी चीजें रखूंगा, बाकी सब छोड़। और इतना ही नहीं, जो सज्जन हैं, जो साधु जन हैं, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना, ये भी उनसे शिक्षा ग्रहण करने का एक उपाय है। ये महाराज, ये साधु जन, ये कैसे जीवन जीते होंगे? हमारे जैसे खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, बोलते चलते, सब करते हैं, लेकिन क्या इनके पास अतिरिक्त है? तो जरा बैठूं तो इनके पास जाकर के देखूं तो ये कैसा क्या करते हैं। अकेले पैर दबाने की बात नहीं है, वो तो लाओ, मैं महाराज पैर तो दबा ही देता हूं आपका, लेकिन पैर दबाते दबाते मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको पैर दबाने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और मैं नहीं दबाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों चीजों में समान कैसे रह लेते हैं? आप आहार करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, हर स्थिति में आप तमाम विषमताओं के बीच में भी, और ये समता आप कैसे ला लेते हैं जबकि बाकी सब मनुष्य की तरह जीते हैं, सब करते हैं? वो चीज मुझे भी सीखनी है। बस ऐसे विचार से उनके चरणों में जाके बैठ जाते हैं, यही सेवा है। मैं आपको सिर्फ देखूं कि आप क्या करते हैं, आप बात करते हैं तो कैसे करते हैं, दूसरे को तकलीफ ना पहुंच जाए ऐसे शब्द, हमसे तो ऐसे शब्द ही नहीं आते हैं। इस तरह एक एक क्रिया से जो है, और जो हम शिक्षा लेना शुरू कर देते हैं, वही सेवा है भैया, भगवान की सेवा। क्या भगवान के पैर दबाएंगे? क्या थक गए वो बैठे बैठे? क्या लाओ भगवान थोड़ा पैर दबा दें, बहुत देर से बैठे हम देख रहे, कल भी आप ऐसे ही बैठे थे, आज भी ऐसे ही बैठे हैं, सारी रात हो गई आपको, सोए भी नहीं आप, लाओ दबा देते हैं पैर। नहीं, आपने तो इस सबसे पार हो गए हैं, आपकी सेवा तो ये है कि मैं आपके जैसा बनने का प्रयास करूं, यही आपकी सेवा, आपके जैसे थोड़ी देर बैठ करके देखूं कि कैसा लगता है। इस तरह से हमने सेवा भी करने का विचार अपने जीवन में शुरू किया। 12 व्रत कितनी आसानी से अपन ने, देखो अभी 5 मिनट में अपन ने 12 व्रत हैं, बहुत कठिन कहने को 5 अणुव्रत अब उनके नाम, और फिर 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, लेकिन है कितनी सी बात करने को, इतनी ही तो है, इतने तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आचार्य भगवंतों ने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये प्रक्रिया पूरी की पूरी दी है। अपन इस पर विचार कर चुके, अपन ने तो आज रिवाइज कर लिया। अब यो शावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तय ते जय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। अब मैं यहां से इन 12 व्रतों का जीवन भर पालन करते हुए ठीक ठीक अगर मरण करूंगा, तब मैं अपने जीवन की सार्थकता मान पाऊंगा। जीवन भर मैंने अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया है, तो मरते समय मैं अपने जीवन को अच्छा ही बनाए रखूंगा, संक्लेश नहीं होने दूंगा, समता पूर्वक अपनी इस देह को कपड़ों की तरह उतार के धर दूंगा। बस ये विद्या और सीखने नहीं है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वैसे आर्ट ऑफ डेथ। जैसे कि मैं जीवन की विद्या सीखता हूं कि कैसे जीना चाहिए, ऐसे ही मरण उपस्थित होने पर, मरण की विद्या नहीं, मरण उपस्थित होने पर कैसे मरना है, जब मरण उपस्थित नहीं आए तो कैसे जीना है, ये ठीक है जी रहे, अपनी तरफ से मरण उपस्थित नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, मरण उपस्थित हो गया, मरण का कारण उपस्थित हो जाने पर मैं तैयार हूं अपने इस देह को छोड़ने के लिए, समता पूर्वक मरण के समय अपनी देह को छोड़ देना, इसका नाम है संलेखना। लेखन के मायने हैं क्रश करना, सत लेखन, समीचीन रूप से आत्मज्ञान पूर्वक अपनी देह को छोड़ देना, अपनी कषायों को कमजोर कर देना, अपने शरीर को भी कमजोर बना देना, क्रश कर देना। क्रश करने के मायने हैं कमजोर बना देना। शरीर कमजोर कब बनता है? जब हमारी आसक्ति शरीर में होती है तब बनता है शरीर कमजोर, ध्यान रखना। जितनी जिसकी शरीर में आसक्ति उसका शरीर उतना कमजोर है। आप कहीं नोट करके रख लेना, विश्वास नहीं हो तो विचार करके देख लेना, सहसा निर्णय नहीं लेना कि ये क्या कह रहे हैं। जिस समय हमारी शरीर से आसक्ति, जितने ये लोग लड़ने जाते हैं शरीर का भान भूल जाते हैं, तब बंदूक उठाते हैं और फिर नहीं याद रहता कि क्या है और कौन है। उधर जरा एक बार वीरता जहां जागृत होती, क्यों? शरीर से आसक्ति खत्म, फिर मेरा देश उससे आसक्ति मेरी है, हो जाने दो, शरीर बलिदान, शरीर बलिदान होगा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये चीज कहां से जागृत होती है? और नहीं तो बैठी थी सुकमाल, बैठी थी घरे, सरसों के दाने चुभ रहे थे और आरती करी थी, सो आंसुआ आ गए थे और चावल बीन बीन के खाते थे, कमल पत्र में से खाए नहीं जाते थे, चपते ही नहीं थे, इतने कमजोर, इतने सुकमाल, नाम ही था उनका सुकमाल। और जिस समय आत्मबल जाग गया, शरीर से आसक्ति कम हुई, निकल गए और 3 दिन तक शालिनी ध्यान की मुद्रा में खड़े होने पर भक्षण करती रही तो भी अपने ध्यान से नहीं चिगे और मोक्ष चले। बताइए क्या है ये मामला? इसके मायने हैं कि मैं अपने शरीर को अपने हाथ से कमजोर बनाता हूं, मैं अपनी आसक्ति इसमें से कम करते चले जाऊं, ये मेरा फर्ज है आखिरी समय, नहीं तो मेरा शरीर कमजोर ही है। इस शरीर को छोड़ते समय मैं इससे अपनी आसक्ति हटा लूं तो ये आसानी से छूट जाता है, और मैं जितना इसको पकड़े रहता हूं इसके छूटने में उतनी मुश्किल होती है। मैंने करीब 5-7 संलेखनाएं देखी हैं और अनुभव किया है 2-3 दिन पहले आयु पूरी होने से किस तरह छटपटाहट होती है। शरीर छूटने को है लेकिन जिसकी जितनी ग्रिप है उतनी ज्यादा देर लगती है उसे छूटने में। हाँ, बहुत कठिन काम है ये, अपन इस पे विचार कर ले। आखिरी समय मुझे शरीर तो छोड़ना है, सबका छूटता है, कोई पहलवान हो तो भी छूटता है, कमजोर हो तो भी छूटता है। वो कहते हैं कि बलवान का भी शरीर छूटता है और निर्बल का भी शरीर छूटता है, इसलिए शरीर छूटते समय क्यों ना हम बलवान की तरह शरीर छोड़ें, निर्बल की तरह क्यों शरीर छोड़ें। ये तो एक नाव है, मुझे उस पार ले जाती है और जैसे ही उस पार मैं पहुंच जाऊं तो फिर इसे शहर छोड़ दूं। नहीं, ये मेरी नाव, इसने मुझे पार कराया, तो धरे रहो मूल पर, इसके लिए क्या होने वाला, उस पार पहुंच गए। तो ये नाव की तरह, लेकिन निश्चिद्र होनी चाहिए नाव, ऐसा नहीं है, निश्चिद्र नहीं होगी तो पार नहीं होगी। इसलिए जब तक जीवन है तब तक इसको निश्चिद्र, इसको स्वस्थ बनाए रखूंगा, इससे काम लेता रहूंगा, और जब ये लगेगा कि अब ये छूटती है तो धीरे से छोड़ दूंगा कि ठीक है अब जाओ। जैसे नाव में ज्यादा बड़ा छेद हो जाए और पानी तेजी से भरने लगे तो क्या करते हैं, अपना जो कीमती सामान है वो ले और कूद जाओ और आराम से पार हो, अब इस नाव के भरोसे नहीं रहो। ठीक इसी तरह से उपसर्गे दुर्विक्षे जरस रुजायाम जनिक प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखनाम आर्या। भगवान ने क्या कहा है, तीर्थंकरों ने हमारे लिए क्या सदुपदेश दिया है, क्या रास्ता बताया गया, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो ही करेगा, अपने को क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अपने को ये करना चाहिए कि अपन आत्मस्थ रहें, बस उसको जो करना है वो शरीर के बारे में कर सकता है, मेरा शरीर वो छुड़ा सकता है, इसलिए जब वो शरीर जाने वाला है तब मैं आत्मस्थ हो जाऊं। बस उपसर्गे दुर्भिक्षे, ऐसी स्थिति बन गई कि कि लोगों को खाने के लिए पीने के लिए उपाय ही नहीं है कुछ, तो दुर्भिक्ष की स्थिति में अब तो प्राण जाएंगे, क्यों अन्नम वही प्राण, अन्न में भी प्राण टिके हुए रहते हैं, अब अन्न ही नहीं है, पानी ही नहीं है, दुर्भिक्ष आ गया। शांति से सरलेखना धारण कर लो। जरासी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे करके प्रतिकार किया जा सकता नहीं, निष्प्रतिकारी उपसर्गे निष्प्रतिकारी, ऐसा उपसर्ग जिसका निवारण संभव नहीं है, ऐसा दुर्भिक्ष जिसका निवारण संभव नहीं, वो अलग बात है कि 12 साल का उत्तर भारत में दुर्भिक्ष पड़ा है तो भद्रबाहु आचार्य अपने 12,000 शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चले गए, वहां तो दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। ये निष्प्रतिकार अगर स्थिति है तब के लिए है, जब तक प्रतिकार संभव है तब तक तो जीवन जीने की ही प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन जब अब जीवन में ऐसा ऐसा भीषण उपसर्ग आ गया कि उसका प्रतिकार संभव नहीं है, जीवन जाने को है, तब तब की कंडीशन है। बुढ़ापा आ गया जिसका प्रतिकार संभव नहीं, या कि ऐसा रोग हो गया जिसका प्रतिकार संभव, कैंसर हो गया, अब 2-3 साल टिकेंगे, ठीक है, बढ़िया और अच्छा रहा। हम तो सोचते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज हो जाए लोगों को तो घबराते क्या है, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ, पता तो लग गया कि अब इतना ही रह गया, अब काम कर लो अपना, जितना नहीं कर पाए जिंदगी भर उतना कर लो इसमें। हाँ, विनोबा के आश्रम में एक गीता बहन थी, बताती उनको कैंसर हो गया, जब मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया तो बोली कि ठीक है फिर मैं नियम लेती हूं कि अब बर्तनों में भोजन नहीं करूं, अन्न इत्यादि नहीं खाऊं, पत्तियां और सब्जियां ही उबाल करके खाऊं, पानी भी गर्म करके पीऊं, मकान में नहीं रहूं, अपनी झोपड़ी बना के नीम के पेड़ के नीचे रहूं, ये मेरा अपने जीवन का निर्णय, जब तक जीवन शेष है, सरलेखना वल्लेखना छोड़ो, ये ही उनके जीवन का नियम। वो तो बहुत बड़ी बात, इतना कर लिया उनने, बाप विनोबा से पूछ करके, और रहने लगी अपने हाथ से झोपड़ी बना करके, और मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, गरम करके पानी पीना, उबली सब्जी खाना, मरी ही नहीं वो 15 साल तक जी, कैंसर वैंसर कुछ नहीं हुआ उनका, कहां चला गया वो कैंसर। हाँ, वो सोच रही थी कि हम तो 2-3 साल के और रह गए, 15 साल तक जी स्वस्थ बढ़िया से, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप आ जाओ वापस, कहती नहीं अब तो स्वीकार कर लिया, जीवन भर के लिए यही प्रक्रिया, जब तक जीऊं आनंद के, और अपन तन्नक खबर भर लग जाए डॉक्टर झूठी कह देवे तो अधमरे से तो सुनता ही हो जाए कौ, आदि प्राण तो निकले गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाता है तो अपनी कमजोरी है, ये अपने को ये संभालना चाहिए। अगर निष्प्रतिकार रोग आ गया है कोई बात नहीं, अब जब रोग आ गया है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, किसी भी क्षण मेरा मरण संभव है तो मैं शांति से मरूं। आपने आप फिल्म देखते, फिल्म देखते होंगे बहुत, आपने ऐसी नहीं, आपने आनंद नहीं देखी, आनंद बहुत पहले, अब पुराने लोग मुझे याद है वो अभी तक, हाँ उसमें वो उसका मालूम पड़ जाता उसको कि कैंसर है, लेकिन कैसे मरता है, सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आखिरी तक प्रसन्न रहता। मैं सोचता हूं यही चीज उसका बहुत बड़ा मैसेज था, उसका यही मैसेज था कि जब तक जिए तो खुश होकर के जिए, शांतिपूर्वक जिए, मरण निकट आने पर भी उतनी ही खुशी, मरण मेरे खुशी को नष्ट ना कर पाए, मरण मेरी पवित्रता को भंग ना कर पाए, मरण मेरे आनंद को संक्लेश में ना बदल पाए, बस मैं जीवन से निराश नहीं हूं। वे लोग जो जीवन से निराश होकर के मरण का इंतजार करते हैं उनके मरण की चर्चा नहीं करो, वे जो जीवन का आनंद लेते हुए मरण उपस्थित होने पर इंतजार करते हैं कि आओ आई एम रेडी, मेरी सारी तैयारी है, जब आओ तब तब चलेंगे। जैसे अपन कहते थे ना कि देखो भाई मैं 2-3 दिन बाद प्लान कर रहा हूं जाने का यात्रा पर, हाँ ठीक जब तुम्हें आना वाना, हमारा तो होल्डाल हमेशा लगा रहता है, तुम जब आओगे उठाऊंगा चल। ऐसे ये विद्या भी सीखना आवश्यक है और ये जीवन भर सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आखिरी समय सीखो, कि जब मरण उपस्थित हो जाए तभी सीख लेनी है, नहीं, जीवन भर सीखना पड़ेगा। ध्यान रखना, सीखने से मतलब है ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। जितनी तैयारी जीवन की है उतनी ही इस जीवन के समाप्त होने पर आगे के जीवन के लिए मैंने तैयारी कर ली है, उस यात्रा की भी, महायात्रा की भी तैयारी। ये तो छोटी मोटी यात्राएं हैं जिनकी हम तैयारी करते हैं। तो ऐसे कारण उपस्थित धर्माए, अब काहे के लिए मुझे देह छोड़नी है, अपने धर्म के लिए। धर्म मतलब मेरी अपनी निर्मलता, और कौन सा बड़ा धारी धर्म है, मेरे अपने परिणामों की निर्मलता ही धर्म है, वो मेरा अपना स्वभाव है। मुझे अपने उन परिणामों की निर्मलता बनाए रखने के लिए अगर शरीर छूटता है ऐसे कारण उपस्थित होने पर, तो उसे छोड़ देना है। इसी का नाम संलेखना है। तीन तरह से शरीर छोड़ा जाता है। एक तो आयु पूरी होने पर छूट जाता है, हमें पता ही नहीं लगता, आयु पूरी हो गई, खबर ही नहीं लगती। और कब के लगो, अभी तो हमसे बात कर रहे थे, बात करते करते वो लेट ही थे और कहने चले गए, अच्छा हो गई आयु पूरी हो गई, ऐसे छूट जाता। दूसरा शरीर छूटता है झटके दे दे करके, समझ गए आप, सुसाइड करते हैं लोग, वो भी एक शरीर का छूटना हो। तीसरा है शरीर छूटने से पहले उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब जो शरीर छूटता है। इसके टेक्निकल नाम है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया। एक होता च्युत, एक होता चावित, और एक होता है त्यक्त। त्यक्त के मायने हैं अपनी तरफ से छूटते हुए शरीर को पहले ही छोड़ दिया, जब छूटना हो तब छूट जाना, हमने अपनी आसक्ति हटा ली उसमें से, ये त्यक्त। संलेखना पूर्वक छोड़ा गया शरीर त्यक्त कहलाए। च्यावित झटके दे करके, और च्युत आयु पूर्ण हो जाने पर छूट गया, ये उसके टेक्निकल नाम है। लेकिन तीनों तरह से छूटता है शरीर, देखो अपन देख रहे हैं इसको। या तो आप शांति से छूटता हो तो छोड़ दीजिएगा, और आप निराश हैं जीवन से तो झटके दे करके उसको छुड़ा दीजिएगा, और या फिर आयु पूर्ण करके सोते सोते ही और आप चले गए, पता ही नहीं लगा। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा, मेरी आत्म जागृति पूर्वक मैं शरीर को छोड़ूं, ये सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। और इसकी तैयारी पूरे जीवन भर करी जाती है भैया। इस पे अपन और विचार करेंगे। आज तो एक छोटी सी बात आपसे आखिरी में कहूं कि अगर तैयारी हमारी नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी। रोज भावना, तैयारी क्या करनी है, भावना भानी है बस। कौन सी भावना, गुरु मूले यति निजिते चैत सिद्धांत वारदि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनी सन्न सन समन्वितम मरणम। मरण मेरा हर बार जन्म लेने पर होगा, ये तय है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, ठीक है, मेरा मरण हो, जब जब भी मेरा मरण हो मुझे क्या करना है, मेरे सानिध्य, मेरा मरण अपने गुरुजनों के सानिध्य में हो, क्यों, जिससे मेरे परिणाम संभले रहे। यति निचिते, अगर मेरे साक्षात गुरु का चरण सानिध्य न मिले तो मुनिजन सज्जन पुरुष सत्संगति, मेरे मरण के समय सज्जन लोग मेरे आसपास रहें तो मेरे परिणाम संभले रहेंगे। और या फिर यति निचिते चैत सिद्धांत वारति सदघोषे, या फिर अगर कोई सज्जन भी मेरे पास नहीं, मैं अकेला पड़ गया हूं, तब भी मैं किसी मंदिर के आसपास मरूं। पहले लोग मंदिर के आसपास घर तलाशते थे कि इतने मिल जावे, अब भी जाके के बिल्कुल शहर से बाहर कोई कॉलोनी में मिल जावे, उतने हम अपने अलग थलग रहे आए, सो वो भी अच्छा है, हम ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन मुख्यता किस बात की है, इस बात की कि मंदिर निकट रहेगा तो उससे उठने वाली जो धर्म की ध्वनियां हैं वे मेकारों में आती। सिद्धांत वारदी सदघोषे, मेरे कान में जिनवाणी आती रहे, मुझे मंदिर की घंटी सुनाई पड़ती रहे, ताकि मेरे परिणाम आखिरी समय संभले रहे। बस इतनी भावना जीवन भर भानी है। मुख्य बात क्या हुई, मेरे अपने परिणाम संभले रहें, हो सकता है मरण के समय मेरे परिणाम खराब हो जाएं, मैं भावना पूरे जीवन पर भाता रहूं, अभ्यास भी करता हूं। वो अभ्यास क्या करना है उस पर अपन बाद में चर्चा करें, अभी तो सिर्फ भावना भा रहे हैं आज। वरना जो जीवन भर भावना नहीं भाता है, अभ्यास भी नहीं करता, आखिरी समय बहुत मुश्किल होती। एक हंसने वाला उदाहरण है बड़े मजे का, बस वो सुना देता हूं, बाकी तो बात जितनी रह जाएगी उतनी रह जाएगी, पर वो उदाहरण याद रहेगा तो फिर बाकी चीज भी याद आ जाएगी कि हाँ ठीक। तो एक सेठ जी थे, बढ़िया दुकान थी उनकी कपड़े की, बाहरी बड़ा व्यापार था। उनके चार बेटे थे, पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन कहानी में तो ऐसे ही है। अब उनको क्या करना, नहीं भी होंगे तो अपना क्या जाने वाला इस कहानी में है। वो चारों बेटे उनके बड़े आज्ञाकारी थे। अब पिताजी बिल्कुल अस्वस्थ, मरणासन्न, सब खड़े उनके चारों, उनकी जीवन साथी भी सब सेवा में उपस्थित हैं। अब पिताजी को रह रह करके वो बेहोशी आ जाती। वे एक बार जब होश में आए तो उनने धीरे से आंख खोल के और आवाज दी, बड़ा बेटा कहाँ है? बड़े बेटे ने कहा मैं यहां, ये तो खड़ा हूं आपके सिराने खड़ा हूं आपकी सेवा में। तो थोड़े से और उनने आंख खोली जोर से, और वो दूसरे नंबर वाला कहा? उनकी जीवन साथी बोली कि देखो अब आपकी इतनी खराब तो वैसे ही हालत है, और आप इतने परेशान क्या है, सब तो हैं यहीं पर, ये है मंझला वाला, ये मंझला वाला भी यहीं पर है, इससे छोटा वाला कहां है? छोटा वाला वो तीसरे नंबर वाला, वो तो बैठे हुए हैं, आप इतने परेशान हो रहे हैं। परेशान क्या हो रहे हैं, वो तो लगभग उठ के ही बैठ गए। वो कहले और सबसे छोटा कहां है? कहले सबसे छोटा तो मेरे पास खड़ा है, देखो तो। अब तो उनके दोनों पैर भी नीचे उतर गए तखत से जिस पर लेटे थे। कहले लुटवाओगे लुटवाओगे, चारों यहीं पर है, दुकान पर कौन है? अब बताओ आप, मरने को तो रखे हैं लेकिन चिंता किस बात की है कि लुटवाओगे हमारी दुकान? अब अगर ऐसी चिंता है जिंदगी भर तो आखिरी समय भी बहुत मुश्किल है भैया। ऐसा व्यक्ति अपने साथ अपनी दुकान लेके मरता है तो फिर वो व्यक्ति कभी भी, उसने जीवन ठीक से जिए ही नहीं, वो मरना भी नहीं जानता है ठीक से। इसलिए भैया मेरा आपसे कहना यह है कि जब हमने इतनी मेहनत अपने जीवन को अच्छा बनाने की है, कर रहे हैं, तो ये भावना भी हमारी रहे कि हमारा मरण भी भले प्रकार से हो। भले प्रकार से होने का मतलब है शांतिपूर्वक हो, मरना तो है ही, मैं अपने परिणाम खराब ना करूं, मैं सबके प्रति और अपने मन में अच्छे भाव रखूं, अपने मन को भी भला बना करके और इस देह का विसर्जन करूं, बस ऐसी भावना अपनी जीवन भर रहे तो आसानी से हम अपने जीवन को और अंतिम समय को भी अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिख दर्शन करने वाला है। वावग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप सैल नदी तट पर करुत किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
मिथ्यातम ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो मानु शिव खानी है अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काऊ न सता देखो भव्य हो रे आनी है
तार देखो पार के उतार देखो सुखर देखो यही देवानी
रावानी के ज्ञान ते सूझे लुका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो दो ए दिन वाणी भारती कोई जपो दे जो ते हो शरणा गए सो पावे सुख दे
स्वास्थ्य मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन प्रिय चरणों में ओम भी परम पूज्य मुनि श्री 108 भव्य सागर जी महाराज के पावन प्रिय चरणों में अनंत पद प्राप्त है अर्घम देव स्वामी माता की परम पूज्य मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिराज श्री भव्य सागर जी महाराज की मुनि सर्व की बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का छात्रवास समिति स्वागत करती है आपके भोजन की व्यवस्था समाज की ओर से जयस्वाल जैन धर्मशाला में की गई है कृपया आतिथ्य को स्वीकारें
युक्ति रह जाएगी पर उदाहरण याद रहेगा तो फिर बाकी चीज भी याद आ जाएगी हाँ ठीक एक सेठ जी थे बढ़िया दुकान थी।